ये आकाशवाणी दिल्ली है। जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने तुर्की के शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन निलंबित करने की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग किया और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद सरोजनी नगर के नवयुग विद्यालय में विकसित भारत कला कार्यशाला का आयोजन कर रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने तुर्की के शैक्षणिक संस्थानों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन निलंबित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जामिया ने बताया कि वो देश के साथ मजबूती से खड़ा है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी तुर्की में इनोनू विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया था। इस वर्ष की शुरुआत में 3 फरवरी को हस्ताक्षरित समझौते का उद्देश्य सहयोगी अनुसंधान और छात्र आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। यह निर्णय पाकिस्तान के प्रति तुर्की द्वारा प्रबल समर्थन किए जाने तथा आतंकी शिविरों पर भारत के हालिया हमलों की आलोचना के परिणाम स्वरूप आए हैं। देश भर के 125 से अधिक शीर्ष व्यवसायियों ने भी तुर्की तथा अजरबैजान के साथ यात्रा और पर्यटन सहित व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के बहिष्कार का फैसला किया है। ये निर्णय आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ द्वारा बुलाए गए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया। संघ ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला तुर्की और अजरबैजान द्वारा हाल ही में पाकिस्तान को समर्थन देने के बाद लिया गया। ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ के अनुसार भारतीय व्यापारिक समुदाय इसे एक विश्वासघात के रूप में देखता है। सरकार ने तुर्की के ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है। सेलेबी एविएशन दिल्ली सहित 9 शहरों के हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा, उड़ान संचालन, कार्गो और डाक सेवाओं के साथ साथ एरोब्रिज और वेयरहाउस सेवाओं का प्रबंधन प्रदान करती है। BCAS के निर्देश के अनुपालन में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो संचालन के लिए उत्तरदायी सेलेबी संस्थाओं के साथ सहयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और हमारी तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस कूटनीतिक पहल पर बात की है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पाकिस्तान से पनप रहे आतंकवाद पर भारत की स्थिति से वैश्विक समुदाय को अवगत कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में संस्कृत के विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वामी राम भद्राचार्य और प्रख्यात उर्दू शायर और गीतकार गुलजार को 2023 के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति ने स्वामी राम भद्राचार्य और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बधाई दी। हालांकि गुलजार अस्वस्थ होने के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता है और जागृत करता है। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में देश के स्वतंत्रता संग्राम तक कवियों और लेखकों ने लोगों को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है।
भारतीय ज्ञानपीठ इन दो शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। ये एकता पूरी भारत में व्याप्त भावनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता की अभिव्यक्ति है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भारत की मिट्टी की महक होती है।
स्वामी राम भद्राचार्य के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने उत्कृष्टता के एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति ने 1965 से विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की प्रशंसा की। इस अवसर पर स्वामी राम भद्राचार्य ने पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साहित्यिक अवदान को मान्यता मिली है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीएमसी में वित्तीय अनियमितताओं सहित कई कमियां थीं। उन्होंने कहा कि डीएमसी के कार्यप्रणाली को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई डीएमसी के गठन तक डीएमसी को भंग करने का फैसला किया गया है।
इसमें तमाम बहुत सी कमियां थी। डॉक्टर के साथ मजाक हो रहे थे, जो फ्रेश डॉक्टर आ रहे थे, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडमिशन लिया कि तब तक जब तक नई गवर्नमेंट हो जाती डीएमसी, इसको भंग किया जाए। तो भंग करके डीएचएस को हमने पावर दिए कि डीएचएस कुछ एज ए रजिस्ट्रार चलाएं, जो यंग लड़के हमारे डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए भटकना ना पड़े।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं है। मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस विपक्षी गठबंधन की स्थापना देश की सेवा या उसके विकास के लिए नहीं बल्कि मात्र सत्ता हासिल करने के लिए की गई थी। भाजपा के नेता तरुण चुघ ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन भ्रष्ट नेताओं का गठजोड़ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कल बृहस्पतिवार को होने वाले सभी स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं अब अगले महीने की 20 तारीख को सुबह के सत्र में आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय के अनुसार गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कल लगी आग की घटना के कारण सुबह के सत्र में होने वाली सभी स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC सरोजनी नगर में नवयुग विद्यालय में आज से विकसित भारत कला कार्यशाला का आयोजन कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यशाला में कला से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियां विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं।
इस कार्यशाला में NDMC के 43 विद्यालयों के विद्यार्थी कैनवस पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में NDMC विद्यालयों के सभी छात्र हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए देश भर के मशहूर कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला का उद्घाटन NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने किया। इस दौरान उनके साथ मशहूर मूर्तिकार पद्मश्री बिमन बिहारी दास और चित्रकार जयप्रकाश तथा अन्य कलाकार मौजूद रहे। आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री चहल ने कहा कि कला अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा रूप है क्योंकि यह कई भाषाओं में व्यक्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विद्यार्थी कैनवस पर रंग उकेरेंगे।
तमाम सीनियर लोग जो बात करके निकल कर आए कि जिस तरह से सेना की ऑपरेशन सिंदूर सफलता हुई तो सफलता को लेकर भी पेंट करेंगे। तमाम चीजों को आप एक साथ एक कैनवस पर देखेंगे।
आकाशवाणी से बात करते हुए पद्मश्री जयप्रकाश ने कहा कि इस कार्यशाला में बच्चे विकसित भारत थीम और अपनी सोच को कैनवस पर उकेरेंगे।
थीम रखेंगे जो अपने विकसित भारत में क्या क्या हुआ है और आपके बच्चों की क्या सोच है, भी क्या रहा है, तो उनके माध्यम से वो अपनी कला के माध्यम से, अपने कलर के माध्यम से वो कैनवास उतारेंगे।
10 दिवसीय इस कार्यशाला का समापन इस महीने की 25 तारीख को होगा। NDMC के विद्यार्थी सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इस कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली सचिवालय में आज सिक्किम दिवस पर कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में सिक्किम के नागरिक निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी मेहनत, समर्पण और कर्मठता से न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रत्येक राज्य के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राजनिवास में सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस समारोह मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों राज्यों के निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आजादपुर मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी की स्थिति का जायजा लिया और व्यापारियों, मजदूरों और आगंतुकों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंडी में स्वच्छता और सुरक्षा समेत मूलभूत सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता व्यक्त की। श्रीमती गुप्ता ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजादपुर मंडी में सुरक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंडी के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की। उन्होंने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को मंडी में तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पिछले 10 वर्षों के मंडी के बजट का ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार व्यापारियों और मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम करेगी। उन्होंने कहा कि सभी पहलों को समय पर लागू करने के लिए नियमित कार्रवाई की जाएगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सचिवालय में दिल्ली अग्निशमन सेवा के आधुनिक अग्निशमन वाहनों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पिछली सरकार के समय अग्निशमन व्यवस्थाएं खस्ताहाल थीं। उन्होंने कहा कि इस वजह से भाजपा सरकार कई त्रासदियों के दौरान लोगों को जरूरी समाधान नहीं दे पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली को ऐसी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
हम दिल्ली को बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही टेक्निकली अपडेटेड और सक्षम फायर फाइटिंग सिस्टम अवेल कराएंगे। उसमें लेटेस्ट मशीनरी होगी जिसमें कर्मचारियों की भी जान की रक्षा हो पाएगी और जहां पे आग लगी है उस क्षेत्र को फटाफट उसको कवर अप किया जा सके। हम कमिटेड हैं दिल्ली को ऐसी व्यवस्था देने में जहां कुछ भी दुर्घटना होते ही तुरंत उसका रिलीफ जनता को मिले।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड पंजीकरण शिविर का दौरा किया। इस योजना की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि वृद्ध जनों की बीमारियों के उपचार और देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में सुविधा प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने राजधानी के औचंदी गांव से 13 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से बांग्लादेश के पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। इन सभी अवैध बांग्लादेशियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी विभाग में आज 2 नई हेमोडायलिसिस मशीनों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप देवता ने कहा कि ये मशीनें न केवल तीव्र गुर्दा विफलता के लिए हेमोडायलिसिस में मदद करेंगी बल्कि क्रॉनिक गुर्दा रोग से पीड़ित बच्चों को भी सहायता प्रदान करेंगी। नई दिल्ली के मेहरोली पुरातत्व पार्क में स्थित 16वीं सदी की राजाओं की बावड़ी का जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि यह परियोजना पारंपरिक जल प्रणालियों को बहाल करने के महत्व को रेखांकित करती है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमारस्वामी ने कहा कि ये वेबसाइट समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सभी हितधारकों को सशक्त बनाएगी। ये वेबसाइट विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर भारतीय इस्पात उद्योग के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। मौसम। राजधानी में कुछ इलाकों में आज शाम हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने तुर्की के शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन निलंबित करने की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।